ये आकाशवाणी है। अब आप शशांक कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
आकर्षण बधाए, और जब टूरिज्म बढ़ता है तो व्यवसाय के भी अनेक अवसर आते हैं और उसका लाभ भी हमारे मिडिल क्लास को बहुत मिलने वाला है, उनके आय के साथ। आदरणीय सभापति जी, आज हमारा मिडिल क्लास आत्मविश्वास से भरा हुआ है और ये अभूतपूर्व है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य बना देता है देश का, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का मध्यम वर्ग विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए कमर कस करके खड़ा हो गया है, हमारे साथ चल पड़ा।
इससे पहले भाजपा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर के नेता एचडी देवगौड़ा ने कहा कि गरीबों, महिलाओं और किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बजट में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए किए गए बजटीय आवंटन की भी सराहना की। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अवैध नागरिकों को वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामान्य सिद्धांत है। ये देशों के सामूहिक हित में है कि वे वैधानिक आवागमन बढ़ाएं और अवैध आवाजाही को हतोत्साहित करें। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका से भारतीय नागरिकों को वापस भेजने के बारे में आज राज्यसभा में एक बयान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि देशों की जिम्मेदारी है कि वे अपने उन नागरिकों को वापस लें जो अवैध रूप से विदेशों में रह रहे हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि अवैध नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर सुनिश्चित कर रही है कि वापस भेजे जा रहे भारतीयों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। उन्होंने अवैध रूप से बाहर भेजने वाले उद्योग पर शिकंजा कसने और देशों के बीच अवैध आवागमन को रोकने की जरूरत पर बल दिया। इससे पहले दिन में इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस पर बहस की मांग की। लोकसभा में भी विदेश मंत्री की ओर से ऐसा ही बयान दिया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल हुए शांतिपूर्ण मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूप में सुरक्षित रख दिया गया है। निर्वाचन आयोग और पुलिस अधिकारी इसकी निगरानी में तैनात हैं। वोटों की गिनती के लिए 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 70 सीटों के लिए 699 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला शनिवार को होगा। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण 8 एपिसोड के एक नए प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस महीने की 10 तारीख को आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कार्यक्रम के नए प्रारूप में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और अपने अनुभव और ज्ञान साझा करेंगे। कार्यक्रम की पहली कड़ी में प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम के अंतर्गत युवा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। इसी के अंतर्गत 5 दिनों तक चलने वाले जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश में आज शिवपुरी जिले के बेहटा गांव में वायुसेना का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय पुलिस और प्रशासन और दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वायुसेना ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। नागपुर में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 249 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 48वें ओवर में 248 रन पर सिमट गई। हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट लिए। यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा ने एक दिवसीय क्रिकेट में डेब्यू किया। विराट कोहली को घुटने की चोट के कारण विश्राम दिया गया है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी में सर्विसेज के नीरज कुमार ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में हरियाणा की सुरुचि और प्रमोद ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में कर्नाटक पहले, सर्विसेज दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है।